अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ स्थान जगन्नाथ टेम्पल बेंगलोर में आप सबका 7 दिन के भगवत गीता के सत्संग में स्वागत करते हैं। प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक भगवद गीता का ये धारावाहिक 7 दिन के लिए भगवत अमृत भगवान श्री कृष्ण के मुख से झरते हुए इस अमृत का हम पान करेंगे। गीता अमृतम इदम, गीता को गीता के महात्म में अमृत कहा गया है। ये गीता का अमृत स्वर्ग के अमृत जैसा नहीं है। गीता का अमृत सर्व पाप विनाशनम, सारा पाप नाश करता है, और स्वर्ग का अमृत सारे पुण्य नाश करता है। पुण्य करके स्वर्ग में जाओ, अमृत पियो और सारे पुण्य नाश हो जाएंगे, तब फिर संसार में आना पड़ेगा। तो दोनों अमृत में कितना अंतर है। भागवत का अमृत पाप को नाश करता है और स्वर्ग का अमृत पुण्य को नाश करता है, और सब लोग स्वर्ग में जाते हैं पुण्य नाश करने के लिए। भगवद गीता का अमृत पाप को नाश करता है। गीता अमृतमिदम, ये पठे प्रियत पुमान, जो कोई प्रेम से गीता के अमृत को पान करे वो बड़ा भाग्यशाली है। विष्णु पदमवापन होती, वो भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति करता है। भय संसार में सबसे बड़ा भय शोक, भय किस चीज का, मेरे पास जो है वो चला न जाए, शोक जो चला गया है उसका, भय शोक सब खत्म हो जाता है, आदमी निर्मल हो जाता है। भगवत गीता, दो शब्द है भगवत गीता, भगवान का गीत, भगवान का गीत संसार के मोह माया में उलझे हुए लोगों को जगाकर, सोए हुए उलझे हुए लोगों को सुलझाकर, जगाकर अपने स्वरूप में स्थित करना। अपने स्वरूप में स्थित करना का मतलब जिस उद्देश्य से हम इस संसार में आए हैं उस उद्देश्य को समझना, अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पालन करना, इसके लिए ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये गीता मेरा हृदय है, गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है। इसका अर्थ क्या है कि गीताओं की शिक्षा, गीता की जो शिक्षा है ये भगवान के हृदय में विराजती है। तो भगवान के हृदय में कौन रहता है। भगवान अपने शब्दों में कहते हैं मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ। ये भगवान का वचन है, ये भागवत में भगवान ने वचन दिया है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। तो ये भगवत गीता अगर भगवान का हृदय है तो ये किसके लिए है, भगवान के भक्तों के लिए। और भक्त की परिभाषा क्या है, जो श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न हो। भक्ति की परिभाषा है प्रेममयी सेवा, जो प्रेममयी सेवा में भगवान की लगन हो, काम जो भी आपका है। ये भगवत गीता क्रांति का शास्त्र है, रिवोल्यूशनरी स्क्रिप्चर है, ये क्रांतिकार श्री कृष्ण है, ये यज्ञ को यज्ञशाला से बाहर निकालकर आपके घर और दुकान के ऊपर यज्ञ करने की शिक्षा देने वाला है। जो भी करते हो यज्ञ करो सी, यज्ञ अश्नासी जो भी खाते हो, यज्ञ जो सी जो देते हो, यज्ञ तपस्या सी जो तपस्या करते हो करो। दुकान पे रहते हो दुकान पे रहो, घर में रहते हो घर में रहो, यज्ञ करते हो यज्ञ करते रहो। लेकिन एक शब्द सिर्फ तुम अपने जीवन में, अपनी मानसिकता में, अपनी धारणा में, अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में एक शब्द को बिठा दो, ये मैं श्री कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहा हूँ। एक शब्द ये है हमारे पीछे, बोलो श्री कृष्ण प्रीति अर्थे। सो कृष्ण कृष्ण की प्रीति के लिए ये मैं कार्य कर रहा हूँ, चाहे वो युद्ध का कार्य क्यों ना हो, चाहे वो अशुभ हो दुनिया की नजर में, लेकिन कृष्ण के लिए किया जा रहा है तो वो यज्ञ है। तो अर्जुन अर्जुन पाठ पूजा नहीं कर रहा था, दान नहीं दे रहा था, अर्जुन तो बाण चला रहा था, लेकिन कृष्ण के लिए कर रहा था। तो इस श्लोक के बाद दूसरा श्लोक है शुभाशुभ परित्यागी, शुभ हो या अशुभ हो लेकिन भगवान की सेवा में लगने से सभी अपने आप में परम पवित्र। जैसे कितने नदियां और गंदे नाले गंगा में जाते हैं, लेकिन गंगा तो पवित्र ही रहती है, वो नाले ही पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान से संबंधित कोई भी काम होगा वो अपने आप में परम पवित्र हो जाएगा। तो ये सिद्धांत भगवत गीता का, जो करते हो, जो काम करते हो, जहां रहते हो, जो आपका कर्तव्य है, ये एक महावाक्य है भगवत गीता का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुसम्रा युद्धत। ये गीता का महावाक्य है। इसलिए अर्जुन इससे पहले जो श्लोक है वो श्लोक है कि अंत समय जो मेरे को याद करता है वो मेरे पास आता है। ये श्लोक कहकर भगवान कहते इसलिए अर्जुन तुम हम हर समय मेरा सुमरण करो। आपका सुमरण करो मंदिर में जाके नहीं, युद्ध करते हुए, युद्ध से सुमरण भी करो और युद्ध भी करो। काम छोड़ के भक्ति करो ये नहीं, अपना काम भी करो और मेरा सुमरण भी करो। और सुमरण नहीं लिखा है श्री कृष्ण ने, अनुसुमरण लिखा है। सुमरण का मतलब आपका मन करे वैसे याद करो, अनुसुमरण का मतलब जैसे पहले पूर्व आचार्यों ने भक्तों ने सुमरण किया है, उनके अनुगत होकर, उनके पीछे चलकर, उनके बताए हुए मार्ग को पकड़ के और सुमरण करो मेरा। अनुसुमरण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सुमरण होने से कैसे कोई भी सुमरण करे किसी भी रूप में नहीं, अनुसुमरण का मतलब अनुगत होकर, परंपरा के अनुगत होकर, जो मार्गदर्शन दिया जाए उसमें रहकर सुमरण करो, अपने मनमानी से नहीं करो। तो ये सब ध्यान से सुनना, माम अनुसमरचक, मेरा वैसे सुमरण करो, महाजन महाजन ये न गता सपंथा, जिस रास्ते से महाजन गए हैं, महात्मा गए हैं, वैष्णव आचार्य गए हैं, उस मार्ग का अनुशीलन करो, उसके पीछे चलो, ये अनुसमरण की परिभाषा है। एंड युद्ध च, और अपने कर्तव्य कर्म को करो। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, आप वैश्य हो तो अपना दुकान चलाओ, लेकिन स्मरण मेरा करो। तो भगवान का स्मरण भी करें और अपना काम भी करें, ये कैसे हो सकता है, दोनों साथ कैसे हो? कहते हाथ काम में, मुख में राम हाथ में काम। भाई मुख में राम होना चाहिए, हाथ में काम होना चाहिए। एक उदाहरण इसको देते हैं, इसका उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं। पानी भरने के लिए दो मटके उठा के पनिहारी पानी भरने जाती है। सर के ऊपर एक के ऊपर एक मटका होता है पानी का, और दोनों हाथ हिलाती हुई चलती है, सहेलियों से बात करती है, लेकिन ध्यान किस में होता है? मटकू के बैलेंस में, कि मटका हिल न जाए। जैसे पनिहारी के सिर के ऊपर जो मटके का बहलना होता है, ध्यान उसमें रहता है और काम करती है, चलती है, बोलती है, ऐसे आप अपना काम करो, लेकिन सर के ऊपर राधा कृष्ण के मटके को बिठा दो और ध्यान उसका करते रहो। जैसे जो मटके माता खाती है, जैसे राधा और कृष्ण का मटका मानो आपके सर के ऊपर है, आप कोई भी काम करो, ध्यान उनका करो और काम संसार का करो। पहले पानी उठाते थे, अभी भगवान को सर के ऊपर धारण कर। बहुत सरल सा साधन है, कभी भी भगवान को भूलो नहीं, हमेशा भगवान को याद रखो। ये सारे वेदों का, शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का यही सार है, कृष्ण को कभी भूलो नहीं और हमेशा कृष्ण को याद रखो, सदा स्मरण में रहो, कभी मत भूलो। अपना काम करते रहो, काम छोड़ने की जरूरत नहीं। ये गीता के पहले अध्याय में एक सिद्धांत हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? अर्जुन युद्ध को छोड़ना चाहता है और कृष्ण कहते हैं नहीं, अपने काम को छोड़ने से आप मेरे भक्त नहीं बन सकते, आप अपना कर्तव्य कर्म करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए, मेरे मार्गदर्शन में अपना काम करो। तो ये पहला सिद्धांत भगवद गीता का ध्यान में रखना है, काम अपना करना है, स्मरण भगवान का करना है। क्या स्मरण करना है? ये मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की प्रीति के लिए कर रहा हूँ। ये चेतना हमारी बन जाए तो हम कुछ भी करते हुए भगवान की भक्ति सदा के लिए कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चेतना अपने काम में बना के रखनी है। श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता के विषय में लिखते हैं कि ये हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये भगवद गीता की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। ये हमारी संस्था, इसका मूल ग्रंथ जिसके जो इसका नीम है, जो इसका आधार है, वो भगवद गीता है। और भगवद गीता कैसी है, कैसा भगवद गीता की शिक्षा है, पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म के इस भगवद गीता के शास्त्र को मान्यता है। कोर्ट में शब्द गीता के ऊपर लिया जाता है। तो गीता सर्वमान्य शास्त्र है और इस गीता एक तो ये है तो जेन्युइन है। जेन्युइन है का मतलब ये भगवान के मुख से निकली है, इसलिए ये नकली नहीं है। एक कहो एक जेन्युइन चीज लेते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, नकली है। जो मार्केट में दो चीजें मतलब बोला ये बाबा जेन्युइन है, मतलब अपनी अपनी कंपनी का माल है, और ये तो बाबा दो नंबर का माल है। तो ये भगवत गीता दो नंबर का नहीं है, जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब है भगवान के अपने मुख से निकला हुआ है, भगवान के मुख की वाणी है। जेन्युइन का मतलब है कि ओरिजिनल पर्सन ने अपने मुख से ओरिजिनली जैसे कहा है वैसे ये है। तो जेन्युइन की परिभाषा क्या हुई? ओरिजिनल है, भगवान के मुख की वाणी है। संतों के मुख की वाणी भी होती है, भक्तों के मुख की वाणी भी होती है, लेकिन ये तो भगवान के मुख की वाणी है। उदाहरण दिया है, गंगा भगवान के चरणों से निकलती है और तीनों लोगों को पवित्र करती है। गंगा कहां से निकली? भगवान का चरण धो के निकली। तो ये भगवान के मुख से निकली हुई गीता सबका उद्धार करे तो इसमें कौन सा विचार करने की बात है? लिखा है भगवान के मुख पद्मादम, भगवान के मुख से निकली है, गंगा तो चरण से निकली है, भगवान के चरण और मुख में अंतर नहीं है, फिर भी जो मुख से निकली है वाणी वो भगवान की वाणी जैसे गंगा पवित्र करती है, इसलिए दूसरा श्लोक गीता महात्म का है, मर्म मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम बदी स्नानम संसार मल नाशनम। रोज स्नान करते हैं शरीर के मैल को धोने के लिए, एक बार और गीता के अमृत में नहा लो तो जन्म मरण के सारे मैल धुल के साफ हो, गीता सारे मैल को साफ देगी। ये स्नान करना है, ये आत्मा का स्नान है, जल का स्नान शरीर का स्नान है और गीता का पाठ प्रतिदिन आत्मा का स्नान है। आत्मा को स्वच्छ करके अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए इस गीता की शिक्षा जो जेन्युइन है और हिस्टोरिकली अथोराइज, दूसरा शब्द लिखा है कि ये ऐतिहासिक है और प्रमाणिक है। भगवत गीता भगवान ने बोली कुरुक्षेत्र में, आज भी कुरुक्षेत्र दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पे आज भी पड़ा है और वहाँ ज्योतिष नाम का तीर्थ है और ज्योतिष तीर्थ में एक वट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। आज भी वो स्थान जाके आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र शहर से 7 किलोमीटर आगे ज्योतिष नाम का तीर्थ है, वहाँ ये स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 1 घंटे से कम 45 मिनट में गीता का उपदेश दिया था। तो वो स्थान आज भी जाके देखा जा सकता है, वहाँ वो स्थान है। उस स्थान से 1 किलोमीटर पहले थोड़ा सा जाएंगे लेफ्ट में तो भीषम गंगा है, जहाँ भीष्म पितामह सर सैया के ऊपर सोए हुए हैं और पास में बाण गंगा है। तो वो आज भी ऐतिहासिक स्थान ऐसे का ऐसे पड़ा है कुरुक्षेत्र का। तो हिस्टोरिकली 5000 साल पहले भगवान ने ये भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, वो हिस्टोरिकली अथोराइज है, ते आपको उसको इतिहास में जाके देख सकते। और तीसरा शब्द प्रभुपाद लिखते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। गीता की शिक्षा बहुत स्वाभाविक है, ये आत्मा का जो स्वरूप है ना, आत्मा का स्वरूप है आनंदमय, आत्मा आनंदमय है। तो गीता की शिक्षा आपको आनंद देने वाली है। इस नेचुरल को हम अपने अनुभव से ऐसे बताते हैं कि कृष्ण भावना अमर ये स्कान गीता के ऊपर आधारित है और इस स्कान के दो मुख्य प्रचार के साधन है। नाच के गाना और प्रसाद खाना। बोलो, नाच के गाना और प्रसाद खाना, ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? नाचना और गाना, आदमी जब खुश होता है, छाती होती है, तब नाचता है। नाचना कब आता है आदमी को? जब खुशी में होता है और नाच के फिर खाता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमको दो ऐसे भगवान पूजा के लिए दिए हैं, एक खाने वाला भगवान और एक नाचने वाला भगवान। खाने वाला भगवान जगन्नाथ जी, नाचने वाला चैतन्य महाप्रभु। ये दो भगवान ऐसे महाप्रभु ने हमको दिए हैं, गाओ नाचो और पेट नहीं गले तक खाओ। ये नेचुरल है। कौन इस दुनिया में कह सकता है कि मैं खा नहीं सकता? कोई ऐसा है जो कहे कि मैं खा नहीं सकता हूँ? कोई ऐसा है जो कहे कि मैं गा नहीं सकता हूँ, नाच नहीं सकता हूँ? बच्चा भी कर सकता है ना। तो नेचुरल का मतलब है जो सब कर सके। तो ये संस्था प्रभुपाद के अपने मुख के ये शब्द हैं कि मैंने इस संस्था का प्रचार मधुर कीर्तन और प्रसाद वितरण के द्वारा किया। पिट्सबर्ग से प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन जाते हुए कार में अपने भक्तों को कहने लगे कि ये विश्व भर में जो कृष्ण भावना का प्रचार किया है दो ही चीजों के द्वारा, दो साधनों से किया है, नाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। तो ये दोनों नेत्र है, कोई भी आजकल आप गली में किसी को प्रसाद दे रहे, कोई भी ले रहा था, कोई ना नहीं कर रहा था, तो प्रसाद तो सब लेते हैं। और भगवान का नाम भी, कोई भाग्यशाली किसी के पुण्य उदय हो जाए तो नाम लेने में कोई खर्चा भी नहीं लगता है और बहुत सरल है। तो ये नेचुरल है। और ये तीसरा, अभी प्रभुपाद एक शब्द और लिखते हैं, और ये ट्रांसेंडेंटल है। ये भगवान का गीत है, ये कोई संसार के व्यक्ति का गीत नहीं है, ये फिल्म का गीत नहीं है जो पुराना हो जाने के बाद उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ये भगवान का गीत है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है? ये दिव्य है, अलौकिक है। लौकिक चीज, वो एक चीज आप दोबारा 10 बार गाने के बाद थक जाते हो, लेकिन हरे कृष्ण जब से हम थकते नहीं, क्योंकि ये दिव्य स्तर के ऊपर है। प्रभुपाद ने क्या लिखा है हरे कृष्ण जपने के लिए? इट इज भगवत, ये भगवत नाम शरीर के स्तर से, इंद्रियों के स्तर से, मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से ऊपर है, ये आत्मा के स्तर का है, इसलिए ये आध्यात्मिक है, इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल है। तो भगवत गीता की शिक्षा भी सांसारिक शिक्षा नहीं है, लौकिक शिक्षा नहीं है। ये भगवत गीता किताब नहीं है, इसको किताब समझोगे तो काले अक्षर दिखाई देंगे बस। ये भगवत गीता श्री कृष्ण से अभिन्न है, भगवान और भगवान की वाणी समान है, भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। 9वें अध्याय का ये श्लोक इस सिद्धांत को स्थापित करेगा कि कृष्ण और भगवत गीता के अंदर कोई अंतर नहीं है। जैसे भागवत श्री कृष्ण का वाणी का स्वरूप है, ऐसे भगवत गीता श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये श्लोक पढ़िए, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक के ऊपर ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण के शब्द है अनन्य। अनन्य का अर्थ है न अन्य, न अन्य का मतलब और किसी का नहीं, केवल मेरा। चिंतयंतो, चिंतन करो, चिंतन करो का मतलब स्मरण करो, याद करो, ध्यान करो, केवल मेरा ध्यान करो, न अन्य, और किसी का नहीं। मैंने कई बार आपको बताया होगा, जब इस श्लोक को ऐसे पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं भगवान बहुत सेल्फिश है, कहता है केवल मेरी सेवा करो, कहता है केवल मेरे से प्रेम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान ऐसे बार बार क्यों कहते हैं? तो हम बहुत सरल भाषा में इसको समझाते हैं। आप पिता के नाते क्या चाहोगे, कि आपका बेटा आपकी आज्ञा का पालन करे कि किसी और की आज्ञा का पालन करे? हाँ, कोई भी पिता क्या चाहेगा कि बच्चा उसकी आज्ञा का पालन करे कि दूसरे किसी की करे? पिता का करे, पिता की सेवा करे। तो भगवान जगत पिता है कि नहीं है? तो वो अगर कहता है कि आप सब मेरी आज्ञा का पालन करो, तो वो अपने अधिकार से कह रहा है कि मैं आपका पिता हूँ, और पिता को अधिकार है अपने बेटे को कहना कि भाई मेरी सेवा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब दूसरा प्रश्न, वो थोड़ा गंभीर है इससे, क्यों भाई जो पति हैं उनसे पूछता हूँ मैं, आप क्या चाहते हो, आपकी पत्नी आपसे प्रेम करे या खाली जगह? आप इसका उत्तर दो। हाँ, क्या लोग सब लोग क्या उत्तर देंगे? हर पति ये चाहेगा पत्नी मेरी मुझसे ही प्रेम करे, ये सच है कि झूठ है? तो भगवान जगतपति है कि नहीं है? वो जगतनाथ है ना, तो नाथपति को कहते हैं ना, तो वो पति है और कह रहा है हमको कि मुझसे प्रेम करो, गलत कह रहा है क्या? गलत कह रहा है भगवान, ठीक कह रहा है ना। वो जगत पति भी है और जगत पिता भी है। आत्मा का वो पिता है और हमारी सेवा के हिसाब से वो पति है। हमारा स्वरूप आत्मा का, आत्मा स्त्री लिंग है, पुल्लिंग नहीं है। आत्मा शक्ति है भगवान की और भगवान शक्तिमान है। तो हमको भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, ये हमारा स्वरूप है। अनन्यास का अर्थ ये है कि पति परमेश्वर एक हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री के लिए एक शब्द पति परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति को एक जाले में बिठा दे और आरती करे, अगरबत्ती दिखाए। इसका अर्थ है तुम्हारे लिए एक पति ही जीवन भर, जिसको तुम अपना समर्पण करो, वो एक ही तुम्हारे लिए पति है। पति परमेश्वर का मतलब एक ही व्यक्ति से तुम्हारा जीवन बीतना चाहिए, इसका अर्थ ये। तो ऐसे भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तु माम, ये ऐसे भगवान कहते कोई भी, ऐसे नहीं कह रहा है कि भाई कोई भारतवासी करे या कोई ब्राह्मण करे या कोई सन्यासी करे या कोई स्त्री करे, नहीं, कोई भी, किसी भी देश का हो। प्रभुपाद जी कहा करते थे ये भगवत गीता साइंस है, विज्ञान है। कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवत गीता इज ए साइंस। तो विज्ञान के कॉलेज में पढ़ना है किसी को, भाई फिजिक्स कर पढ़नी है किसी को, तो उसमें कोई किसी जाति का भी हो तो एडमिशन ले सकता है, किसी देश का है तो भी ले सकता है। भाई कॉलेज के अंदर तो सब पढ़ते हैं ना, भाई बाहर की दृष्टि से किसी का फेथ क्रिश्चियनिटी का हो, किसी का फेथ मोहम्मदियन हो, किसी का फेथ और कोई हो, लेकिन अगर साइंस पढ़नी है, जाके आपको डॉक्टरी पढ़नी है, तो सारों को जाके ऐसी जगह पढ़नी पड़ेगी। तो दिस इज साइंस ऑफ गॉड, ये भगवान का विज्ञान है, इसलिए ये सार्वजनिक है। ये सबको इसको पढ़ने के लिए निमंत्रण है, भगवान का इन्विटेशन है, आइए आइए। कोई भी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्या चिंतन तो मान। और फिर भगवान ने कहा ये जनहा, कोई भी, किसी भी देश का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी खेत का हो, पर्युपासते, उपासते नहीं कहा। उपासते का मतलब मेरी पूजा करता है कुछ पाने के लिए। पर्युपासते का अर्थ है मुझे पाने के लिए मेरी पूजा करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भाई मंदिरों में उपासना तो होती है, लेकिन काय के लिए? भगवान से कुछ मांगने के लिए। और पर्युपास्य का अर्थ है उपासना करता है अपने आप को अर्पण करने के लिए। दोनों में दिन रात का अंतर है। उपासना से मैं भगवान से मांगते हैं, पर्युपासना में अपने आप को भगवान को अर्पण करते हैं, इतना दोनों में अंतर है। पर्युपास्य का मतलब परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उपासना करना। किसी भी मंदिर में लाखों लोग रोज जाते हैं, उनसे आप बाहर पूछो काय के लिए जाते हैं, 99.99% लोगों का उत्तर ये है कि कुछ पाने के लिए जाते हैं, दुख निवारण के लिए जाते हैं, सुख पाने के लिए जाते हैं। दो ही, दुख निवारण, सुख प्राप्त करने, ये दो उद्देश्य मंदिर में जाते हैं। आर्त होगा, जिज्ञासु होगा, अर्थार्थी होगा या ज्ञानी होगा, ये सारे सकाम भक्त हैं, ये सारे सकाम भक्त हैं। अपने आप को कोई भगवान को अर्पण करने जाता है क्या? कुछ कम पहले दिया है भगवान ने कि और कुछ मांग रहे हो? कितनी सुंदर काया दी है, कितना सुंदर ये शरीर दिया है मानव का, और फिर शरीर के अंदर आपको बहुत सुंदर रहने के लिए घर परिवार खाने के लिए सारी व्यवस्था सब कुछ तो पहले से करके रखते। जन्म देने से पहले भगवान हर एक की कोटा का अन्न पहले निर्धारित कर लेता है। एक साधु था, उसके नया शिष्य था, और नया शिष्य अभी कच्चा तैयार हुआ तो उसको अपने साथ भिक्षा लेने के लिए पहली बार ले गया जंगल से शहर में। तो साधु जब भिक्षा लेने जाते हैं तो भिक्षा हमेशा माता से मांगते हैं, भिक्षां देहि माते, ऐसे कहते मेरी माँ भिक्षा दो, क्योंकि घर में पुरुष होते नहीं है और प्रसाद बनाती भी माता जी है और देती ही माता जी है, तो भिक्षां देहि माते कहते हैं। तो एक नौजवान लड़की घर से निकल के साधु को प्रसाद देने लगी, तो प्रसाद लेते हुए नए शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछा हटके, बिना स्त्री को कभी देखा नहीं था उसने, उसको आश्चर्य हुआ कि ये महाराज प्रसाद देने वाली को छाती में क्या गांठें हो गई थी, छाती ऐसे फूली हुई क्यों थी, समझा नहीं। तो गुरु जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा ये शादी करके जब माँ बनेगी ना तो ये दूध की थैलियां भगवान ने बना के रखी हैं। शिष्य कहता है गुरुजी बच्चे के जन्म से पहले भगवान ने उसके भोजन का व्यवस्था करके रखा है, तो हम सबके भोजन का व्यवस्था भी भगवान ने पहले से करके रखा है, ऐसे नहीं रखा। जैसे दूध समाप्त होने लगता है दांत आने लगते हैं, चबा के खाने के लायक हो जाता है, हर एक अपने टाइम के ऊपर काम होता है और सबके लिए होता है, सिर्फ जो भक्त है उनके लिए होता है और चोर के लिए नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। तो जन्म से पहले भगवान सबके आवश्यकताओं की कोटा को, इसलिए मूर्ख कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो फिर बड़ी समस्या होगी, ये दुनिया बनाने वाले आप लोग नहीं हो, जिसने दुनिया बनाई है उसने व्यवस्था भी ठीक करके रखी है, वो कोई वोटों से चुन के आया हुआ नेता नहीं है, वो स्वयं भगवान है, उसके काम में कोई त्रुटि नहीं है। केवल पानी की समस्या के लिए लोग कहते हैं भविष्य में पानी मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मूर्खों से पूछो कि समुद्र कभी सूखेगा क्या। प्रभुपाद जी कहते तीन चौथाई हिस्सा धरती के ऊपर पानी है और भगवान ने उसमें साल्ट मिला के प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करके रखा है, जरूरत के हिसाब से बादल बना के बरसात करके सबको मीठा पानी देता रहेगा, अगर आप भगवान की भक्ति करोगे यज्ञ करोगे तो, नहीं करोगे तो नहीं चाहिए तब बरसात आके डुबा देगी और जब चाहिए तब नहीं आएगी। भगवान ने ये कहा है वर्षामी च निग्रामी च, मेरी मर्जी है बरसात करो, मेरी मर्जी है रोक दो, नवे अध्याय का सफर बिल्कुल सीधा श्लोक है, मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बरसात को भेज दू। अनन्या चिंतन तो मां ये जनहा परिउपासते, मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी उपासना करते हैं, क्यों मंदिर में आते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से नहीं भगवान को। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण से सहायता लेने गए थे द्वारका, दोनों युद्ध में सहायता लेने के लिए गए थे और कृष्ण ने दोनों के सामने निर्णय रखा, च्वाइस रखा, एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना कृतवर्मा सेनापति और एक तरफ मैं अकेला और युद्ध भी नहीं करूंगा, अर्जुन पहले तुम चुन लो क्या चुनते, युद्ध के लिए किस चीज की आवश्यकता है, सेना की क्या जो नहीं लड़े उस आदमी की, सेना की। अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं आपको चुनता हूं, दुर्योधन ने कहा बहुत अच्छा मुझे सेना चाहिए। तो दुर्योधन कृष्ण से मार के सेना लाया और सेना के साथ समाप्त हो गया, अर्जुन केवल कृष्ण को मांग के लाया और कृष्ण अमर है तो आज अर्जुन भी उसके साथ भगवद गीता के शब्दों में अमर हो गया, दोनों का अंतर सामने पड़ा है, एक मांगा मांग के लाया सब कुछ समाप्त हो गया और एक कृष्ण को मांग के लाया, वो अमर हो गया। कृष्ण के साथ उसका चित्र बहुत सुंदर छपा हुआ मिलेगा हर समय। कृष्ण अमर हो गया पार्थ सारथी, कृष्ण कृष्ण का नाम हो गया पार्थ सारथी, पार्थ का सारथी कृष्ण ने अपना नाम ले लिया। क्यों? ये कृष्ण, ये अर्जुन की पहली शरणागति है। उसने कृष्ण को चुना, सेना को नहीं चुनी। हम क्या कृष्ण से मांग, कृष्ण को मांग लो ना। परिउपास्य का मतलब है भगवान को मांगना, और उपास्य का मतलब है भगवान से मांगना। तो दोनों में दिन रात का अंतर है। भगवान को मांगना चाहिए, भगवान को मांगने के बाद और कुछ मांगने की जरूरत नहीं रह जाती। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां, तेषां वो जो ऐसे मेरा केवल स्मरण करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मुझे पाने के लिए पूजा करते हैं, वो नित्य, नित्य का मतलब है प्रतिदिन हर समय, अभियुक्तानां, युक्त का मतलब होता है जुड़े होना। युक्त कहते हैं जुड़े हुए को, जो एक दूसरे से अलग नहीं होता है उसको युक्त कहते हैं। शब्द है युगल, जुड़ा हुआ। जैसे राजा कृष्ण को कहते हैं युगल जोड़ी, युगल का मतलब अभियुक्त का नाम, जो सेवा में ऐसा मुझसे जुड़ा हुआ है। तो एक प्रश्न उठता है, आपसे जुड़ा हुआ है, हर समय आपके पास ही बैठा रहता है, तो फिर उसका पालन पोषण कौन करेगा? अथवा उसके पास जो है उसका देखभाल कौन करेगा? जैसे किसी का परिवार है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पास ही बैठा हुआ है, आपको ही पाने के लिए आपके ही चरणों में बैठा है, तो फिर उसके घर परिवार को कौन चलाएगा? उसके रक्षा कौन करेगा और उसकी आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? ये प्रश्न उठ गया। तब भगवान ने दो शब्द किया, योग क्षेमम वामि अहम्, मैं स्वयं बहन करूंगा, कंधे के ऊपर उठा के उसकी जरूरत को पूरा करूंगा और उसके हर चीज की सुरक्षा का जिम्मेवारी मेरी है, उसके पालन पोषण का भार मैं अपने ऊपर उठाता हूँ। अर्जुन पूरे कृष्ण पूरे महाभारत युद्ध के 18 दिन तब सैनिक सोते थे, कृष्ण बाहर वीर मुद्रा में, जैसे हनुमान बैठते हैं घुटना नीचे घुटना ऊपर, वो पांडवों के शिविर के बाहर बैठते अच्छी तरह से सावधान रहते थे। कोई भी राजनीति की चाल कौरवों की तरफ से होती थी, कृष्ण परमात्मा उनके हृदय में है, उन जो सोचते हैं वो कृष्ण को तो पहले पता लगता था। और कृष्ण उसी वक्त एक बार द्रौपदी को आधी रात को उठाया, एक बार अर्जुन को आधी रात को उठाया, एक बार द्रौपदी को आधी रात को उठाया, बोला चलो पांचाली, बोला रात को कहाँ जाना है, बोला बहुत जरूरी काम है, चलना पड़ेगा। युद्ध भूमि है, रास्ते में वीरों के शव पड़े हैं, रक्त पड़ा है, कैसे द्रौपदी को भगवान ने द्रौपदी के कैसे उठा के गए हैं भीष्म के शिविर पे बाहर बैठ के, भीष्म पिता ने के द्रौपदी को आप अंदर जाना, बोलना मत, हाथ जोड़ के बोलना पितामह प्रणाम। भीष्म ने कहता कह दिया सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया, भीष्म ने इस वक्त पांचाली आप कैसे आ गई, दुर्योधन की पत्नी को आने का सूचना दी थी कि वो जाके आशीर्वाद लेके आएगी, लेकिन कृष्ण को पता पहले लग गया, उसने द्रौपदी को ले, द्रौपदी को कहा आप इतने सेना के रणभूमि से चल के आई, आपके पांव में कोई कीचड़ भी नहीं लगी है, ऐसे कैसे आ गई? द्रौपदी बोली नहीं, भीष्म बाहर निकला, देखा तो कपड़ा काला ओढ़ के और बैठा है कृष्ण, और भीष्म ने देखा तो वो जब हड़बड़ा के उठा तो द्रौपदी के चप्पल नीचे गिरे जो कृष्ण संभाल के बैठा था वहां। भीष्म को आश्चर्य लगा कि ये सब ये इसका काम है, अगर ये चाहेगा कि तुम्हारा सौभाग्य बचे तो कौन तुम्हारा सौभाग्य बिगाड़ सकता है। एक बार अर्जुन को आधी रात को उठाया कृष्ण, चलो कहाँ चलना है, दुर्योधन के पास चलना है, दुर्योधन में क्या काम है, बोल चलो करना क्या है, कृष्ण मैं थका हूं सारा दिन युद्ध किया है, तुम चिंता करो मुझे छोड़ो आराम करो, कल सुबह युद्ध करना, बोले नहीं बहुत जरूरी काम है तुम्हारे को जाना है, क्या करना है, बोला तुम्हारे को अर्जुन ने जो वर दिया और तुम्हारे को दुर्योधन ने एक वर दिया था याद है, काम्य वन में वनवास के समय जब वो चित्र गंधर्व अर्जुन का जिस चित्र गंधर्व दुर्योधन को बंदी बनाया, करण भी छुड़ा नहीं छुड़ा सका करण भी दुशासन भी कोई भी, ये समाचार पास में युधिष्ठिर महाराज के पास आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन जाओ दुर्योधन को मुक्त कराओ, भीम ने कहा नहीं मरने दो, मेरे को जलाने के लिए हमको तो यहाँ कंदमूल खाना पड़ रहा है, मुझे जलाने के लिए हमारे सामने वो बड़े कढ़ाई के अंदर पकोड़े फ्राई करके मुझे जला रहा था, मरने दो उसको, मुझे ही दुख देने के लिए आया था। तब युधिष्ठिर महाराज ने दो शब्द बड़े सुंदर कहे, का भाई भीम जब दुनिया वालों से हमारा युद्ध हो तब हम 105 भाई हैं, 5 पांडव और 100 कौरव, हम 105 हैं। जब दूसरी दुनिया के साथ हमारा वैर विरोध है तो हम 105 हैं। हमारे घर के अंदर झगड़ा है तो वो 100 है, हम 5 हैं, ये तो हमारे घर की बात है, लेकिन अभी बाहर का हमारे कौरव वंश के ऊपर कलंक है कि दुर्योधन जो है युवराज को बंदी बना दिया, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ये शिक्षा युधिष्ठिर की आप बेंगलोर के भक्तों के लिए अति आवश्यक है कि जब बाहर किसी से हमारा वैर हो तब हम एक साथ हैं, अलग नहीं है, आपस में हमारा कुछ भी हो कोई बात नहीं। 105 हम अर्जुन गया तो गंधर्व तो अर्जुन का मित्र था, उसने दुर्योधन को छोड़ दिया, तब दुर्योधन ने कहा अनुज मांगो आज मैं हस्तिनापुर चाहिए तो दे दूंगा, बोला नहीं चाहिए वो तो कल लड़ाई लड़ूंगा तब लूंगा, मैं अब युद्ध से लेंगे अभी वनवास के बाद लेंगे, भिक्षा नहीं चाहिए क्षत्रिय को। अर्जुन कह कृष्ण कहता आज वो वर मांग लो, जाओ उसको याद दिलाओ। बोला क्या मांगना है, बोला भीष्म को ये बहुत क्षत्रिय उसके क्षत्रिय धर्म को ललकारा कि क्या हमारे सेनापति आप बने हो, आपकी वजह से कर्ण मेरा मित्र सेना में आ नहीं रहा है, मेरी सेना गाजर मूली की तरह कटी जा रही है, और पांडव 5 के 5 अभी तक जिंदा है और मेरे 7 भाई तो मर चुके, 6 में से 7-70 तो मर चुके हैं। भीष्म क्षत्रिय था, बोला ठीक है ये मेरे 5 बाण है, ये 5 बाण चल पांडवों के लिए पर हार करूंगा मैं इनसे, और मानुष के ये बाण मैं संभाल के। अब दुर्योधन की मन में आया कि कहीं ये बाण बाबा कल कहीं और को जो मेरे को तो मैं संभाल के रखूंगा। दुर्योधन बाण लेके गया अर्जुन को कहा कृष्ण ने तुम जाके कहो वो वर मैं मांगने आया हूँ, तो बोले मांग लो पार्थ, तो बोलो 5 बाण दे दो। आधी रात को जाके दुर्योधन का दरवाजा खटखटाया अर्जुन, दुर्योधन का इस वक्त कैसे आया अनुज, अर्जुन बोला एक वर आपने दिया था वो याद आया मुझे मांगने आया, बोला क्या चाहिए, हस्तिनापुर चाहिए युद्ध बंद कर दे, बोला नहीं वो लड़ाई चालू रहेगी, तो फिर क्या मांगने आयो, बोला वो 5 बाण जो भीष्म ने दिए है वो दे दो। और दुर्योधन भी उदारता से 5 बाण अर्जुन को दे दिए। अब कृष्ण वापस अर्जुन को ले आया, निश्चिंत हो गया। सुबह भीष्म कहता है युवराज बेटा दुर्योधन कल मैंने वचन करके बांध दिए थे लाइए युद्ध के लिए, पिता हम बाण तो कल रात अर्जुन ले गया। अर्जुन ले गया, अर्जुन को कैसे पता लगे, सब कृष्ण के काम है, ये उसने सारा षड्यंत्र किया होगा। ठीक है, आज मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूँ, आज ऐसा मैं घोर युद्ध करूंगा, या कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन को मरा हुआ समझो। ये उस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा करके इतना भीष्म युद्ध किया, इतना भीषण युद्ध किया कि अर्जुन के प्राण संकट में देखकर कृष्ण रथ से कूदे, रथ का पहिया हाथ में उठाया और कृष्ण ने अपना वचन तोड़ा और भीष्म पितामह ने हथियार नीचे रख के कृष्ण को प्रणाम किया, बोला मेरे वचन की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ दिया। तो ये भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अर्जुन की रक्षा करने के लिए सारी रात वीरासन में बैठते थे बाहर, कृष्ण की माधुर्य लीला का वर्णन तो है, कृष्ण की वीर लीला का वर्णन दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कृष्ण के वीर रथ के ऊपर पूरा पुस्तक लिखा है, कि पूरा इतना खंड है हमारे पास, वो है पड़ा हुआ है कि कृष्ण का वीर रथ कैसे वीर पुरुष थे, कैसे कैसे लोगों से जूझे है और कितना सुरक्षा का दुर्ग बनाया उन्होंने। आज तक किसी ने पानी के बीच में ऐसा दुर्ग नहीं बनाया है, वो अपने सैनिकों के अंदर जो 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 बोलते थे वीरता के लिए, तब कृष्ण के वीर रस का बहुत सुंदर उन्होंने कविता में लिखा है, कृष्ण वीर रस के ऊपर पूरा इतना ग्रंथ। तो कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो कुछ भी उसकी सुरक्षा का दायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं और जो कमी है उसको पूरा करते हैं। इस श्लोक के ऊपर टीका में ये कथा सबने सुनी होगी, लेकिन फिर भी अच्छी चीज को दोहराना बहुत अच्छा होता है। अर्जुन आचार्य नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था, महाभारत के ऊपर टीका लिखते हुए जो भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक के ऊपर आया, तो वहां भी शब्द के ऊपर उसको संदेह हो गया। वहां भी शब्द से वाहन शब्द निकला है, जो गाड़ियां होती है माल भार उठाती है ना, इसको वाहन बोलते हैं। वाहन का मतलब है भार ढोने वाली गाड़ी, लोडिंग कैरियर। तो लोड तो अर्जुन आचार्य कहते हैं वहां भी गलत शब्द आ गया है संस्कृत में, शायद भगवान थोड़ी अपने कंधे के ऊपर उठा के किसी को देंगे, किसी के हाथ से दिला देंगे। तो कलम निकाला, वहां भी शब्द के ऊपर काटा उसको कलम से और विचार किया, मैं आके लिखूंगा ददामी हो अच्छा लगेगा, या कैसे कोई और शब्द जिससे लगे कि भगवान विवस्ता करते हैं, या ऐसा कुछ शब्द निकले। और ये कर काट के चले गए भिक्षा लेने, पांच घरों में गए, भिक्षा कहीं से मिली नहीं। पंडित जी भिक्षा लेने गए थे, तब तक घर में छोटा सा 10-11 साल का बच्चा कांधे के ऊपर एक लकड़ी, लकड़ी में दो टोकरी लटकी हुई भार की, दरवाजा खटखटाता है, ब्राह्मणी दरवाजा खोला है, बच्चे की सुंदरता को देखती है, बच्चे के ऊपर भार को देखती है, बच्चा भार को नीचे उतारता है, कहता है माँ इसमें दूध है, इसमें दही है, ये चावल है, ये घी है, ये चीनी है, ये आटा है। पंडित जी ने सारी घर के भोजन की सामग्री भेजी। वो जैसे बच्चा नीचे उतार रहा था, बच्चे की पीठ के ऊपर एक लाल निशान देखा माँ ने, बोला बेटा इतनी बहुत चोट लगी है आपकी पीठ पे, किसने मारा है? बोला पंडित जानी, पंडित जी ने मारा है, मुझे आने में देर हो गई, उन्होंने मुझे लाठी मारी। पंडित जानी ने कहा ऐसा तो हमारा पति बहुत कोमल हृदय है, किसी को मुंह से भी नहीं अपने मुख से भी वचन कड़वा नहीं बोलता है, तो तुम्हारे को ऐसे लकड़ी कैसे मारी होगी? बैठो बेटा भोजन बनाती हूँ, पंडित जी आते हैं, आप भी प्रसाद खाना, मैं पूछूंगी। माँ तो भोजन बना के चलेगी, बच्चा चला गया, पंडित जी आया दरवाजा खोला, पत्नी ने भोजन परोसा, खीर पूरी आए हलवा ये हो। तो पंडित आश्चर्य से पूछता है आज कुछ भिक्षा नहीं मिली, ये ऐसा आपने 56 भोग कैसे बनाया? बोला आप पंडित जी आपने भेजा था, अभी मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा भोजन कर लो तो पूछूंगी। वो छोटे बालक के ऊपर इतना सामान लाद दिया और उसको आने में देर हुई तो उसको लाठी क्यों मारी? अब पंडित का दिमाग चकराने लगा कि कौन बालक
किसको लाठी मारा, कौन सामान लेके आया। जो भागवत के ऊपर टीका लिख रहा था बुद्धिमान तो था पंडित, पंडित गमा था ठमका और सहारे ही पंडितानी तू भाग्यशाली है, मैं मूर्ख शास्त्र पढ़ के जीवन मेरा व्यर्थ गया और तेरे ही शुद्ध हृदय के कारण भगवान का दर्शन तुमको हुआ। मैं मूर्ख अभी जाने से पहले गीता के श्लोक के वाहमी शब्द को काट के गया हूँ और ये शब्द के ऊपर कलम नहीं चली, ये एक एक शब्द श्री कृष्ण का अंग है, वो श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर निशान चोट का लग गया था, भोजन नहीं किया। पंडित आंखों से आंसू भरते गीता का वो पद देखता है तो वहां भी शब्द के ऊपर से लकीर नहीं है, वो शब्द ऐसे का ऐसे चमक रहा है कि ये शब्द गीता का एक एक अक्षर एक एक भगवान के शरीर के जैसे रोम होते हैं ना ऐसे। तो ये गीता भगवान से अभिन्न है, इसको कृष्ण समझ के अच्छे तरह से कपड़े में रख के सावधानी से बड़े सम्मान के साथ और भाव के साथ जैसे भगवान को पूजते हैं ऐसे इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर कृष्ण अर्जुन से बात करता हुआ दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। अनपढ़ व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पढ़ना आता था वो दक्षिण भारत के मंदिर में गीता को केवल ऐसे पकड़ के बैठता था, लोग हंसी उड़ाते थे अनपढ़ है, आंखों से रोज आंसू बहते हैं और गीता लेके घंटों यहाँ बैठा होता है। चेतना महाप्रभु ने जब उससे पूछा कि विप्रवर आप क्या करते हो, बोला मैं गीता को, गुरुजी ने कहा है गीता पढ़ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन फिर भी रोज लेके बैठता हूँ और मैं जब देखता हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त के सारथी बने हैं, और जब मैं ये कृष्ण अर्जुन को देखता हूँ और कृष्ण की करुणा को देखता हूँ, भक्त वत्सल का तो देखता हूँ, तो मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं। तब महात्मा कहते तुम गीता को जानते हो बेटा, पंडित पढ़ते हैं लेकिन तुम गीता में कृष्ण अर्जुन को देख रहे हो, तेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये गीता का आदेश और संदेश है कि गीता को भगवान समझकर, कृष्ण साक्षात समझकर, उसकी वाणी और उसमें कोई अंतर नहीं है, जब उसके उसका शरण लोगे तो एक एक शब्द उठ के आपसे बात करेगा, अपनी शक्ल दिखाएगा और अर्थ अपने आप खुल के सामने आएंगे। इसी को भाव अर्थ बोलते हैं, आचार्यों को वो दिखता है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा यथारूप का मतलब उस वक्त कृष्ण और अर्जुन के चेहरे के ऊपर जो भाव थे, कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो एक भाव आता है चेहरे के ऊपर, हर शब्द के समय हमारे चेहरे के ऊपर एक भाव होता है, शब्द से भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, भाव और शब्द के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो भाव को देखना शब्द के अनुसार, ये जिसको दिखता है वो गीता को समझता है। तो पहला सिद्धांत गीता और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, गीता को अप्रोच करना है पढ़ना है तो पूजने अपने से ऊपर स्थान के ऊपर रखो, ठीक नेम से इसका पाठ करो तो कृष्ण और अर्जुन जैसे प्रभुपाद ने एक लिखा है श्रीमद् भागवत को जो शुद्ध हृदय से पढ़ता है तो एक एक पन्ने के ऊपर कृष्ण का दर्शन है, उसमें एक 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 पन्ने में कृष्ण साक्षात है, गीता के एक एक अक्षर में कृष्ण समाये हुए हैं, लेकिन उसको देखने के लिए हमारे को हृदय की शुद्धि करनी पड़ेगी और हृदय की शुद्धि भी इसी गीता के शरण लेने से होगी, जैसे मल निर्मल का जैसे स्नान करना है ऐसे गीता का पाठ करते करते शुद्धि होगी। तो ऐसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, गीता की शिक्षा आप अपना कर्तव्य कर्म ठीक तरह से करो और सदा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहो, ये दो मुख्य सिद्धांत है गीता के। और गीता के महात्म्य के 7 श्लोकों में से 2-3 श्लोक तो अभी हमने आपके साथ चर्चा की और एक सिद्धांत जो अभी तक हम आपको बता रहे थे जिसको प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है भगवद गीता का केंद्र बिंदु, भगवद गीता का केंद्र बिंदु श्री प्रभुपाद लिखते हैं, दुनिया में सब लोग सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई भी सुखी नहीं है, ये सच है कि झूठ है, सब सुख के लिए बहुत ज्यादा प्रयास के साथ संलग्न है, लेकिन फिर भी पले अंत में दुख पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि सब लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए परिणाम दुख ही होगा, परिणाम दुख ही होगा। ये भगवद गीता का एक दूसरा अद्भुत श्लोक है, पांचवें अध्याय का। ये संस प्रतजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौनते न तेजु रमते बुद्धा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? ये संस प्रसजा भोगा, जो इंद्रियों के विषयों में भोग करना चाहते हैं, उस भोग के गर्भ में दुख जन्म लेता है। दुख योनि एवते, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है संस्कृत में, छोटा शब्द है लेकिन बहुत भारी शब्द है। एव का अर्थ है वो केवल दुख, दुख के उस इंद्रियों के सुख के गर्भ में केवल दुख ही जन्म लेता है। हर सुख इंद्रिय हर सुख के गर्भ में दुख का जन्म होता है। इसका मतलब जब हम सुख भोगते हैं तो दुख का बीज बो रहे हैं। हर सुख भोगने के साथ दुख का बीज बो रहे हैं, वो हमको भोगना पड़ेगा। और आदि अंतवंत, ये अभी ये जो संसार का सुख है ये अभी है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, ये सदा रहने वाला नहीं है, अलौकिक सुख नहीं है, सदा रहने वाला अनंतम सुखम नहीं है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम नहीं है, ये तो क्षण सुख है। तो ये तो अंतवंत, ये तो सुख जानने वाला है। प्रभुपाद जी कहते ऐसे अगर इंद्रियों के विषयों के सुख में पड़े रहोगे तो सदा दुख आपको पले पड़ेगा। फिर क्या करो? बोला कृष्ण इंद्रिय प्रीति के लिए काम करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो तो आप सुखी हो जाओगे। भगवान आनंदमय है, आपकी सेवा से संतुष्ट हो गए तो आप अपने आप सुखी हो जाओगे। तो सुख का साधन, सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता, मैं अंग्रेजी में लिखा है, इसको पढ़ता हूँ, आप तो डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग हिज ओन पर्सनल मटेरियल सेंसेस, अपने भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के बदले में बजाय ही हैज टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, हमको भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। देयर इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, ये जीवन की चरम सिद्धि है, परम सिद्धि है। द लॉर्ड वांट्स दिस, भगवान ये चाहते हैं, एंड ही डिमांड्स इट, और इसके लिए वो हमसे आग्रह करते हैं, ऐसे करो, मेरे लिए काम करो। One has to understand this central point of Bhagavad Gita. One has to understand this central point of Bhagavad Gita. ये केंद्र बिंदु भगवद गीता की शिक्षा का, सुख चाहिए, सुख को चाहो सदा शरण राम की ले तो भगवान का शरण ले। राम क्यों लिखा है? राम का मतलब है सुख, राम शब्द का अर्थ ही आनंद है, राम शब्द का मतलब है रमण। रमण किसको कहते हैं? खिलौने को। बच्चा खिलौना देखता है कितना खुश हो जाता है, तो रमण शब्द की राम शब्द की परिभाषा है आनंद। सुख चाहिए तो राम की सेवा करो। राम जैसे राम शब्द का मतलब है सुखदाता, आनंद प्रदान करने वाला। तो सुख चाहिए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो। कुछ बदलना नहीं है, केवल मानसिकता बदलनी है, चेतना बदलनी है। मेरे लिए अच्छा था, बाजार में फल दिख जाए तो एक बार कहो ये भगवान को भोग अर्पण करने के लिए चले जाऊं,
बस इतना सोच लिया। एक आता है मैं ले जाऊं मेरे खाने के लिए, एक मैं भगवान के लिए ले जाऊं, बस इतना अंतर हो गया तो आपके जीवन बदल गया। लाए वही चीज बाजार से, आम लाए, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद खाया, तो आपको आम मिल गया, लेकिन आप सुखी हो जाएंगे, दुख नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपकी अच्छा कपड़ा दिखा, इसका भगवान का पोशाक बनाए तो अच्छा है, भगवान के लिए लाए, भगवान को अर्पण किया, फिर अपना ले बनने लिए बना लिया तो बहुत अच्छा हो गया। कोई कोई चीज भी बाहर दिखे उसको भगवान के साथ जोड़ना सीख जाओ, भगवान से उसको जोड़ोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये गीता का केंद्र बिंदु है। अब एक श्लोक गीता महात्म्य का पढ़ते हैं, फिर आज की कथा को आज विराम देते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। सर्व उपनिषदो गावो दोविदा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधिर्भोक्ता दुग्धम्। अगर सारे शास्त्र वेद उपनिषद अगर गाय का रूप धारण कर लें तो गाय में मुख्य चीज होता है दूध, जो सार गाय से सबको सुख देने वाला प्राप्त होता है वो दूध है। तो सारे शास्त्र समझ लो गाय बन गए, तो उसमें से हमको दूध चाहिए, लेकिन दूध निकालने वाला कोई बुद्धिमान होना चाहिए। सबको दूध निकालना नहीं आता है, गाय खड़ी है, इसलिए मूर्खों को दूध निकालना नहीं आते हैं, गाय को काट के खा जाते हैं। दूध निकालना आता तो सारी उम्र सुखी रहते, एक बार काट के खा जाते, जो आता ही दूध निकालना। तो कौन दूध निकालने में प्रवीण है? दोगदा गोपाल नंदना, गऊ पालू नंद बाबा का बेटा जिसके घर में 9 लाख गाय थी, वो दूध निकालने कितना प्रवीण होगा, वो उस सारे वेद रूपी गाय का दूध निकाल रहा है। बोला गाय जो दूध देती है वो अपने बछड़े के लिए देती है, हमारे लिए नहीं देती। तो वेद रूपी गाय का दूध अगर निकालने वाला भी बड़ा अच्छा ग्वाला हो लेकिन बछड़ा नहीं हो तो दूध नहीं मिलेगा। पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा बना है, स्नेह गाय का बछड़े के लिए होता है, वो दूध बछड़े को देती है। ग्वाला दूध निकालने से पहले क्या करता है? बछड़े को गाय के स्तन को पीने के लिए छोड़ता है, तब गाय का दूध नीचे उतर के आता है, बछड़ा थोड़ा पी लेता है तब ग्वाला निकालता है। तो बछड़ा नहीं होगा तो गाय दूध नहीं देगी। बहुत बड़ा सिद्धांत है, जब तक कोई भक्त नहीं होगा तब तक भगवत गीता का अमृत आपको पान करना संभव नहीं है। अर्जुन जब वक्त बना है, बछड़ा बना है, तब वेद रूपी गाय से कृष्ण ने दूध दुहन करके अर्जुन को तो पिलाया, लेकिन अर्जुन था सुधीर भोक्ता, बड़ा धीरजवान था। धीरज के ऊपर भी अर्जुन की महानता की, स्वर्ग में जाके अप्सरा उसको कह रही है कि आओ हमसे भोग करो, मैं आपसे पुत्र उत्पन्न चाहती हूँ आप जैसा वीर, और अर्जुन उस स्वर्ग में कह दिया आप मुझे ही अपना बेटा मान लो, आपको पुत्र मेरा जैसा चाहिए ना, तो मैं ही आपका बेटा हूँ क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ हैं, तो आप तो उनके भोग्य हो। उर्वशी को अर्जुन ने भोगना नहीं कहा, उसने साफ दे दिया कि 1 साल के लिए आप नपुंसक बन जाओ। ये अर्जुन पहले धीरजवान कितना था, स्वर्ग के भोग को स्वीकार नहीं किया। विराट नगर में जब युद्ध विराट का अर्जुन ने जीता और पता लगा महाराज विराट को, तब कहा मेरी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन आपके साथ करता हूँ। अर्जुन ने कहा मैंने इसको शिक्षा दी है, मैं गुरु हुआ ये शिष्य है, तो शिष्य बेटी के समान होती है, इसके साथ विवाह करना ये मर्यादा का उल्लंघन है। कितना बड़ा सुधीर, कितना बड़ा धीरजवान अर्जुन रहा होगा, लेकिन कहा कि महाराज आपको
हम दुखी भी नहीं करेंगे, मेरा बेटा अभिमन्यु आज जवान है और आपकी बेटी को मैं स्वीकार करता हूँ अपने बेटे के लिए। कितना अर्जुन में संयम था, स्वर्ग के भोग को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा जो सुधीर भोगता है उसके लिए गीता का अमृत उपलब्ध है, और जो आगे भविष्य में आने वाले ऐसे भक्त होने उनके लिए गीता इस महान अमृत का पान वो कर सकते हैं। तो आप भाग्यशाली हो इस गीता के महान अमृत को पान करने के लिए, और 6 दिन के लिए पधारेंगे। आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।